ओके
नमो रंधनम नमो सेतानम नमो यज्ञानम नमो वैधायनम नमो सबसावनम तीना भुवन में सार निजरा कविज्ञान का शिव स्वरूप शिवकार
नमः
नमो त्रियोग सवारी के
थैंक यू वेरी गुड एक्सलेंट ओके सो इन द लास्ट क्लास व्हाट डिड वी डू वी डिस्कस द पेपर दैट वी हैड राइट एंड वी आल्सो ट्राइड काइंड ऑफ यू नो रिवाइजिंग द होल फर्स्ट ढाल इन द फर्स्ट ढाल व्हाट वी हैड द सॉरी मुझे हिंदी में बोलना है तो पहली ढाल में हमारे क्या था चार गतियों के दुखों का वर्णन था हमने स्टार्टिंग करी थी हमारी जर्नी की इस जीव का हेड क्वार्टर जो है जहाँ पर इसने हमेशा अनंत काल बिताया वो है नित्य निगोद वहाँ से हर छः महीने आठ समय में 608 जीव 608 जीव निगोदिया जीव यहाँ इन यहाँ नित्य निगोद से बाहर निकलते हैं और यहीं पर मनुष्य लोक में से छः महीने आठ समय में से मनुष्य गति में से 608 जीव सिद्धिशिला में जाते हैं तो ओवरऑल हमारी बाकी चारों गतियों में नंबर ऑफ जीव रिमेन सेम यहाँ से 608 जीवास का आउटफ्लो और यहाँ से 608 जीवास का इनफ्लो तो ओवरऑल जो संसार है जहाँ पर नित्य निगोद हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं उधर पर नंबर ऑफ जीव रिमेन्स कॉन्स्टेंट राइट यहाँ से 608 अंदर आए और यहाँ से बाहर गए करेक्ट हेलो 100 में से हमने 50 प्लस किया और 50 माइनस किया कितना बचा 100 प्लस 50 माइनस 100 राइट है ना एवरीवन मैथमेटिक्स सिंपल जीरो लेवल मैथमेटिक्स 100 प्लस 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 100 सेम वे लाइक से द नंबर ऑफ जीवास पूरे टोटल पूरे लोक में जो नित्य निगोद से बाहर की जीव है उनका नंबर है अनंत ठीक है उन अनंत में प्लस 608 करो और माइनस 608 करो तो कितने जीव बचे उतने ही अनंत जितने भी हैं राइट लेट्स से दैट अनंत इज अ बिलियन ओके 1 बिलियन प्लस 608 माइनस 608 इज इक्वल टू हेलो
1 बिलियन
इज इक्वल टू 1 बिलियन राइट देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल 608 जीव मोक्ष ले जाते हैं 608 जीव निगोद से बाहर आ जाते हैं द ओवरऑल नंबर रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो आपको पता है सारी गतियों में जीवों के नंबर फिक्स हैं एंड सी अभी यदि स्वर्ग गति में जैसे कि से मानस और रिचुल को जाकर सौधर्म इंद्र में देव बनना है सौधर्म स्वर्ग में देव बनना है एंड समीर को भी जाकर बनना है अब वहां पर ऑलरेडी 3 सीट्स थी ठीक है 3 सीट्स थी और यहाँ से मानस और इनको जाना है वहां पर बट वहां पर क्या होता है कि देव तो भैया उनकी बड़ी बड़ी एज होती है तो जो 3 सीट्स थी ना उनमें से एक सीट खत्म हो एक सीट वाले देव की मृत्यु होने वाली है 6 महीने बाद आफ्टर 6 मंथ दूसरे देव की मृत्यु 1 साल बाद तीसरे देव की 2 साल बाद होने वाली है तो आप लोग को तो अभी जाना है लेकिन आप लोग कब जा पाओगे जब वो सीट खाली होगी तो जैसे कि पहले यदि किसी को जाना है तो 6 मंथ वाले को पहले वहां से सीट खाली करनी पड़ेगी तो देवगति में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं सो देखना कितना इंटरकनेक्टेड है यदि किसी को देव बनना है तो क्या क्या होना चाहिए कि यहाँ पर एक तो उसकी एज विद इन 50 ईयर्स इफ आई हैव टू बिकम देव तो मेरी एज 50 ईयर्स की होनी चाहिए यहाँ पर उससे ज्यादा की होगी तो कैसे काम चलेगा मुझे 50 ईयर्स के बाद बनना है राइट और एट द सेम टाइम व्हेन आई एम अबाउट टू बी देव जो देवगति में मेरी सीट है वहां पर जो देव बैठा है उसको देवगति से जाना होगा डू यू सी इट हेलो आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं
पंडित जी आपने वैसे बताया कि देवलोक में से एक देव चल के कहाँ भी जाता है तभी उसकी जगह भरती है वैसे मतलब
एग्जैक्टली क्या जैसे हमको यहाँ से इंडिया आना है यूएस से तो आपको कैसे होगा यदि पूरा प्लेन में सारी कैपेसिटीज फुल, तो आपको टिकट कब मिलेगी? जब somebody else cancels it, only then you
करेक्ट
will get it. जब तक कोई
करेक्ट
कैंसिल नहीं कर रहा है आपकी वेटिंग है, आपको नहीं मिल रही है.
अच्छा
राइट, द सेम वे इफ वी वॉन्ट टू गो टू देवगति बट ऑल सीट्स आर फुल लाइक प्रेजेंट, तो सम देव विल हैव टू डाई.
करेक्ट
करेक्ट, एंड देन ओनली. तो मतलब क्या हुआ कि इफ मुझको आफ्टर 50 ईयर्स यहाँ से जाना है, और आफ्टर 5 डेज विच एवर, सो विद इन 5 डेज देवगति में से किसी देव को जाना पड़ेगा. राइट, नाउ देवगति से वो देव से मनुष्य हो रहा है, तो मनुष्यों में भी लिमिटेड होती है नंबर ऑफ द मनुष्य, एवरीथिंग इज फिक्स्ड. तो यदि मनुष्य में वो आ रहा है तो मनुष्य गति में से कोई जीव रहेगा, उसको यहां से मरना पड़ेगा. सेम वे, सेम वे, अब मनुष्य से जो जा रहा है वो जाके तिर्यंश होगा, तो तिर्यंशों में भी नंबर इज फिक्स्ड. तो फिर तिर्यंश में से किसी और को वहां मरण करना पड़ेगा और वो कहीं और जाएगा. ऐसे एक जीव यहां से कहीं दूसरी जगह जाता है तो ओवरऑल नंबर रिमेन सेम. कि यदि यहां से कोई मनुष्य मरता है तो कोई मनुष्य जन्म लेता है, देवगति से कोई देव जाता है तो दूसरा देव आता है, नरक गति में कोई नारकी जाता है तो दूसरा नारकी आता है. तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज अ फिक्स नंबर, बट वो नंबर बहुत ज्यादा है. तिर्यंश गति के बहुत सारे हैं, नरक गति में असंख्यात, देवगति में असंख्यात, मनुष्य में काउंटेबल है. ठीक है, तो 608 जीव जब जा रहे हैं तो वो 608 जीव में से कुछ एक इन दो इंद्रिय बनते हैं, कुछ तीन इंद्रिय बनते हैं, कुछ चार इंद्रिय बनते हैं. बट फिर जो दो इंद्रिय बनते हैं, दो इंद्रिय में से मर के कोई तीन इंद्रिय बनते होंगे. ऐसे एवरीथिंग इज सिक्वेंशली फ्लो जाता है. ऐसी है चार गति में एवरीथिंग इज फिक्स्ड. आप मतलब पढ़ोगे जैनिज्म का जो ये पूरा ज्योग्राफी, सिविक्स, बायोलॉजी, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज सो सिस्टमैटिक, यू विल बी अमेज टू नो अबाउट इट. तो ये सब 608 जीवों का जाना, 608 जीवों का आना, फिर देव कौन बनेगा, देव कौन नहीं बनेगा, एवरीथिंग इज सो इंटरलिंक्ड, सो इंटरडिपेंडेंट.
एंड ये सब केवल भगवान को मालूम है.
हाँ, उनके केवल ज्ञान में सब झलकता है, और हम भी ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. तो हमको यदि जानना तो हम भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, हमको भी सब पता पड़ जाएगा. सी हाउ सिस्टमैटिक इट इज, जस्ट थिंक अबाउट इट. ठीक है, हमारे तीर्थंकर भगवान, उनको गर्भ में आना है माता के, राइट? उसके 6 महीने पहले सौधर्म इंद्र को पता पड़ जाता है कि ये दोनों माता पिता बनने वाले हैं. राइट, 6 महीने पहले तक वो गर्भ में नहीं आए हैं. राइट, एंड 6 महीने पहले पता पड़ जाता है कि देखो यही के यही है. अगेन नाउ जो ऊपर से जो जो देव गति से वो आने वाले हैं ना इनके गर्भ में, तो ऊपर से देव गति में देव को पता पड़ जाता है कि देखो 6 महीने बाकी है, मेरी माला मुरझा गई है, तो 6 महीने बाद मैं यहाँ से मरने वाला हूँ.
तो हाउ सिस्टमैटिक इट इज, कितने सारे देव की साथ में होती होगी, मतलब एक देव थोड़ा होगा कि उसकी माला मुरझा
गई. बराबर बराबर. तो लेकिन लेकिन अभी यहाँ पर ये वाले देव को पता है, वहां सौधर्म इंद्र को अवधि ज्ञान से पता पड़ गया. ठीक है, कि ये वाले बनने वाले हैं. अब नाउ सी दैट 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली उनकी मम्मी प्रेग्नेंट 6 महीने बाद हो रही है, 6 महीने पहले नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि 6 महीने तक जब तक वो वहां से मरेंगे नहीं तो मम्मी गर्भ में कैसे आएंगे.
बराबर है.
और ऐसा भी नहीं है, 6 महीने पहले इन लोगों की मतलब जो माता पिता हैं, ऐसा भी हो सकता है, मतलब एक वो तीर्थंकर के नहीं हो, नॉर्मल देख रहे हो. ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि चलो तीर्थंकर नहीं है, जैसे कि हनुमान जी का जन्म होना है. ठीक है, तो पवनंजय, हनुमान जी के माता पिता थे ना सती, अंजना और पवनंजय. नाम सुना है आपने मानस, रिजुल समीर, अंजना जी का, अंजना सती पवनंजय. हनुमान जी का नाम सुना है, हनुमान जी.
पहले पूछो हनुमान जी कौन से, मतलब कौन से पिक्चर वाले बता रहे हैं, क्योंकि जैन रामायण में हनुमान डिफरेंट है और हिंदू में डिफरेंट है.
अपने जो जैन धर्म में जो हनुमान जी हुए ना, जो एक्चुअली ही वॉज भगवान, भगवान बने थे, जो यहाँ मांगी जी से वो मोक्ष गए, मांगी तुंगी मुंबई के पास ही है, वहां से मोक्ष गए. आप लोग कभी आओगे तो अपन चलेंगे साथ में, तो यहाँ से वो मोक्ष के आसपास से ही. ठीक है, तो वो हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी. ठीक है, तो हनुमान जी के पिताजी थे पवनंजय, उनकी माता थी अंजना. तो इनके जो पति थे ना पवनंजय,
एक मिनट, अपने जैन रामायण में हनुमान इज नॉट मंकी, ओके
ही इज नॉट मंकी
यार, ही इज अ ब्यूटीफुल कामदेव थे ना हनुमान
वो कामदेव थे, बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। और पता है आपको उनकी पूंछ भी नहीं थी, उनके मंकी जैसे चेहरा भी नहीं था, इतने सारे हेयर्स भी नहीं थे, एंड ही वॉज लाइक रियल। और उनको भी ये लोग भी पवन पुत्र बुलाते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि एयर का पुत्र है पवन, पवन मीन्स एयर, बट एक्चुअली उनके पापा का नाम पवनंजय था, इसके लिए वो पवन पुत्र कहलाते हैं, पवन उनके पापा का नाम था। ठीक है, तो क्या हुआ कि इनके पापा इनकी मम्मी से अंजना से बात नहीं करते थे, तो मिले नहीं थे कितने सारे इयर्स, ये मिले नहीं उनसे। एंड नाउ व्हाट हैपेंस, इनके एक जगह लड़ाई करने जाना था, एक जगह कोई परेशान कर रहा था, तो एक दूसरे किंग ने इनको लेटर भेजा हेल्प के लिए, तो हेल्प के लिए जा रहे थे। तो जब जा रहे थे तो उनका राज तिलक करने के लिए इनकी पत्नी आई रोती हुई, मतलब उनसे तो बात ही नहीं करते थे, तो इन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। ठीक है, बहुत नाराज थे, इयर्स तक इन्होंने बात नहीं करी अंजना जी से। हाँ, नाउ व्हाट हैपेंड,
14 साल
14 इयर्स तक ही डिड नॉट टॉक टू हर। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड, वो जाते हैं वहां पर लड़ाई पर, तो जहां पर इनका कैंप लगता है रात में रुकने के लिए, तो वहां पर ये लोग देखते हैं चकवा चकवी होते हैं। ठीक है, क्या होता है चकवा चकवी का, चकवा चकवी का ये दो एक टाइप के एनिमल्स होते हैं, ओके, ये कपल होते हैं। तो जैसे ही सुबह सूरज की रोशनी आती है ना, ये लोग ऑटोमेटिकली अलग हो जाते हैं, अपने आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और जैसे ही सूर्य, जैसे कि लोटस होता है, लोटस जैसे ही सूर्य आता है ना, सनराइज होता है, तो लोटस अपने आप खिल जाता है, बड़ा हो जाता है, खुल जाता है, और सनसेट होने पर बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। द सेम वे चकवा चकवी भी दो एनिमल रहते हैं, कपल रहते हैं, जैसे ही सनराइज होता है, उजाला होता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं, और एक दूसरे की इतनी याद आती है इनको, ये लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं, बट इनको मिलता नहीं है कोई, ऑटोमेटिकली ऐसा सहयोगी बनता है, ऐसी इनकी लाइफ ही होती है। और जैसी रात होती है, ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, तो नाउ ये पवनंजय इनको देखते हैं, तो इनको एकदम से ऐसा स्ट्रक करता है कि अरे देखो, इन लोगों से 12 घंटे की रात, इस रात की दूरी नहीं सही जाती, और मेरी पत्नी अंजना वो तो मुझसे इतने सालों से दूर है, उसकी कितनी बुरी हालत हो रही होगी, कितनी तड़पती होगी। तो अब इनको अचानक से रियलाइज होता है, हाँ ये पहले गुस्सा थे, पहले बात नहीं करते थे, अब इनको रियलाइज होता है अचानक से। हाँ, तो ये रियलाइज इनको अचानक से होता है, तो उनको लगता है नहीं अभी मुझे जाके मिलना पड़ेगा। एक्चुअली सिचुएशन क्या बन रही है, स्वर्ग गति में जो हनुमान जी है ना, उनकी जो हनुमान जी का जीव है वो देव है, उसकी एज अब पूरी होने वाली है, उसको क्या होना है, उसको यहाँ गर्भ में आना है, बट पवन जी और अंजना जी तो एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, तो इनके माता पिता ही कैसे बनेंगे। तो नाउ ये सडनली बीच वहां में से कैंप में से रात को अपने फ्रेंड के साथ चुपके से मिलने जाते हैं, उनको इतनी याद आती है, उनको इतना गिल्टी फील होता है, मैंने देखो उसको कभी बात ही नहीं करी, उससे कभी कुछ बोला ही नहीं। तो ये मिलने जाते हैं, वहां पर मिलते हैं, तो अंजना एकदम घबरा जाती है, तो बोलती है आपके पापा देख लेंगे तो कितना घबराएंगे, वो बहुत खुश रहते हैं। ये लोग रात में वहां ठहरते हैं, फिर ये अपना एक एज अ सिंबल कि मैं आया था, अपनी अंगूठी उनको देके जाते हैं, और अंगूठी देके जाते हैं वहां पर। फिर उसी टाइम पर अगले दिन वो अंजना जी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो वहां पर देखो उस हनुमान जी को वहां से मरण करना था, तो यहाँ पवनंजय जी अपने आप उनको ऐसा स्ट्रक हुआ, और फिर वो यहाँ पर आए, और फिर वो गर्भ पर आए। ऐसे ही 6 महीने पहले ही पता पड़ जाता है कि यहाँ तीर्थंकर आने वाले हैं, और फिर 6 महीने बाद वो उनकी माता प्रेग्नेंट होती है, और वो देव गति से यहाँ पर इनके पेट पर आते हैं। तो एवरीथिंग इज सो सिस्टमैटिक, डू यू रियलाइज इट।
अनुभव जी, एक क्वेश्चन है इधर, तो मतलब चारों गति में जितने भी जीव है वो मतलब टोटल नंबर जो है वो फिक्स्ड है क्या?
नंबर फिक्स्ड है, नित्य निगोद से 608 निकलते हैं और वहां से फिर बाहर जाते हैं, बट नंबर इज फिक्स्ड एवरी गति।
नंबर ऑफ जीव इन ऑल द गतिस आर फिक्स्ड, राइट?
यस यस यस, एट अ टाइम।
मतलब अगर आज जैसे अगर वर्ल्ड में पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, राइट?
यस यस यस,
मतलब उतने लोग कहां से भी मतलब उनकी डेथ हो जाती है, राइट? इसका मतलब,
अरे ये तो पॉपुलेशन एज इन अभी तो हमें जो दिख रहे हैं वो तो अकेली भरत क्षेत्र का बहुत छोटा सा पार्ट हम देख रहे हैं, बाकी भी विदेश क्षेत्र में इतने सारे जीव होंगे, इतने सारे कहीं और होंगे, तो ये पूरा एक सिक्वेंस है। हाँ, जब कभी यहाँ पर छठवा काल आता होगा, उसके बाद फिर कोई भी मनुष्य नहीं रहते होंगे, तो ये तो ओवरऑल अपेक्षा, ये मतलब करना नियुक्त की अपेक्षा की हर जगह यदि मनुष्य रहेंगे तो ऐसे रहेंगे, मैं आपको डिटेल में इसका एक दिन अलग से आपको पूरा एक चर्चा शतक में कवित्त आता है तो उसमें इसका पूरा वर्णन है,
हाँ जी,
तो हम उसकी एक दिन चर्चा करेंगे ये वाली किस अपेक्षा से बात है नंबर। तो मे नॉट बी, इट मे नॉट बी इन एवरी काल एंड एवरी स्पेस बट मोर ओर लेस इट्स देयर। मैं आपको बिल्कुल कंफर्म करके पूरा सब कुछ बताता हूँ मैं एक बार खुद ही उसके साथ जब अपन कभी पढ़ेंगे तो, ठीक है। बट यहाँ बात ये करनी कि हम चार गति में भी कहाँ गए ये एकदम हमारा नक्की था। हाँ, क्योंकि जिसको देव गति से मनुष्य में आना हो तो मनुष्य में उसके माता पिता जो होने होंगे उनकी शादी हुई होनी चाहिए, राइट? नहीं तो गर्भ में कैसे आएगा बंदा? यदि मुझको त्रियंश में, यदि वहां पर किसी के त्रियंश में अंडज जीव होना है मतलब अंडे से आना है तो वहां पर वो जो जिसके गर्भ में आना है वो जीव होना चाहिए, राइट? तभी तो गर्भ में आएंगे। यदि मुझे इस ट्यूबलाइट में से कीड़ा बनना है अभी समूर्छन, तो ये वाली ट्यूबलाइट जली हुई होनी चाहिए, वेदर कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जिस पर मैं बर्थ ले पाऊं, राइट? तो यदि रात में यदि जीवों को उत्पन्न होना है तो रात होनी चाहिए। तो एवरीथिंग इज सो फिक्स्ड कि जिस जीव को जहां जन्म लेना होता है वहां पर वो सारे निमित्त बन जाते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो ये चार गतियों के दुख हमने निगोद से स्टार्ट करके तिर्यंश गति, नरक गति, मनुष्य गति और देव गति और फिर निगोद में जाकर फिर तिर्यंश गति, ऐसे दुख हमने इसको पढ़े। अभी जो दूसरी ढाल है इनमें इन दुखों का कारण क्या, जब पंडित दौलत राम जी ने इतने सारे दुखों का वर्णन किया तो क्वेश्चन ये हुआ कि अच्छा ये दुख हुए तो नहीं बहुत भयानक है कि मुझे कोई भी काट रहा है, कोई भी मार रहा है, किसी ने बांध कर रखा है, तो फिर ये वाले दुख हुए क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? तो इस दूसरी ढाल में इस दुखों के कारण का वर्णन है, इस दुखों के कारण को बताएंगे, ठीक है? फाइन, यहां तक ठीक है सबके साथ?
हाँ जी,
ठीक है। तो दूसरी ढाल में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं इस बार कि यदि हमें दुख हुआ है तो दुख के पीछे कारण क्या है। फाइन, तो दुखों का कारण मतलब चार गति में हम लोगों ने एक बात करी थी जो गुरुदेव श्री बार बार बोलते थे कि देखो चार गति में त्रियंश गति में उनको काट रहे हैं ये उनको दुख नहीं है, दुख संयोगों के कारण नहीं है, संयोग किसी को दुखी नहीं कराते, क्योंकि नरक में भी राजा श्रेणिक का जीव जो तीर्थंकर बनेंगे वो अभी उनको नरक के इतने बुरे बुरे संयोग वो उनको दुखी नहीं कराते, वो तो अपने स्वभाव में मस्त हैं, तो संयोगों में इतनी ताकत नहीं कि हमको दुखी करा सके, राइट? कितना सिंपल है।
हाँ जी,
हम लोग एक साथ एक जगह पर बैठे हैं, किसी को कितना ज्यादा पसीना आने लगता है, कोई पूरा का पूरा वेट हो जाता है, राइट? एक ही जगह पर बैठे, आप लोग पंचकल्याणक में गए होंगे जो लोग भी गए, तो किसी को एक ही पंडाल में बैठे हुए एक ही जगह बैठे हुए किसी को बहुत गर्मी लगती है, किसी को कभी फैन ऑन करे ऑफिस में आप जाते हो तो किसी को ठंड लगती है, किसी को गर्मी लगती है एयर कंडीशन से, राइट? तो एक ही टाइम पर एक ही रूम पर एक ही एयर कंडीशन से एक ही टेम्परेचर में किसी को बेकार लगता है, किसी को अच्छा लगता है, मतलब दुख ना तो उस टेम्परेचर से है, ना उस एयर कंडीशनर से है, ना किसी और चीज से, दुख अपनी अपनी एकत्व बुद्धि से है। जिसको भी यह शरीर पर बहुत ध्यान जा रहा है उसको पता पड़ता है नहीं, तो यदि मैं गेम खेल रहा हूँ मेरे पीछे से कुछ छिल भी गया हो, खून भी आ रहा हो, लेकिन मैं यदि गेम में इतना मस्त हूँ मुझे पता ही नहीं पड़ता मुझे कुछ लगी है, और यदि मैं नई गेम खेल रहा हूँ ऐसे ही जा रहा हूँ रूम में और यदि मुझे थोड़ा सा भी टच हो जाए तो मैं ऐसे रिएक्ट करता हूँ लग गया, जब खून भी नहीं आया तब इतना बड़ा ओवर रिएक्शन, और जब मैं गेम खेल रहा हूँ खून ब्लीडिंग हो रही है हल्की सी तो कुछ हमें पता भी नहीं पड़ता है। तो लगने से कुछ नहीं होता है, हमने अपने अंतरंग में उससे कितना अटैचमेंट उस टाइम पर किया, उस मोमेंट पर किया, उससे दुख होता है। तो यहाँ पर जो चार गति के वर्णन किए वो एक्चुअल में संयोगों की अपेक्षा वर्णन था कि हमारे संयोग में जो मिले, और संयोग तो परद्रव्य है, परद्रव्य तो दूसरे द्रव्य को परिणाम आता नहीं है, तो वो सेमर तरु हो, सेमर वृक्ष हो नरक का जिससे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो वाला वृक्ष भी हमको दुखी नहीं करा सकता क्योंकि वो तो अजीव द्रव्य है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बुरा कैसे कराएगा, यही पढ़ा ना हम लोगों ने। तो वो वर्णन तो संयोगों की अपेक्षा किया है, रियल दुख का वर्णन तो अब स्टार्ट होगा। ओके, जो दुख का कारण है वही का वही दुख है, ये वाली बात यहाँ पर गुरुदेव श्री हमको बताएंगे।
तो पंडित जी, सपोज हमें अभी आपने जो एकत्व बताया तो हैप्पीनेस में भी एकत्व होता है तो वो भी एक्चुअली दुख का ही कारण बना।
हाँ, मतलब कैसे नहीं समझा मैं, हैप्पीनेस में क्या एकत्र होता है?
सपोज अभी हम समय शिखर आते हो, ओके, जैसे नीरज भाई और मनीष भाई है, वो तो आनंद का ही दिन है ना, लेकिन हमने वहां आके एकत्र किया कि ओ कितना सारा ताप सब आए नहीं, वैसे कर करके हमने मतलब हम जुट जाते उसमें बराबर। तो
हाँ बराबर, लेकिन लेकिन अभी अपन इसकी बात पढ़ेंगे ना, अभी आगे जो पढ़ने वाले हैं इतनी अमेजिंग चीजें आने वाली हैं। आपको पता है सम्मेश शिखर जी जाना कितनी कितनी अच्छी क्रिया है, तो इसमें हम पढ़ेंगे आगे कि सुखदाई है दुखदाई है, सम्मेश शिखर जाने का परिणाम ये सुखदाई है कि दुखदाई है, या फिर जिन वाणी को पढ़ने का परिणाम ये सुखदाई है या दुखदाई है, या फिर सीमंदर भगवान अभी समव शरण में विराजते हैं, सीमंदर भगवान के समव शरण में मैं जाऊं और उनकी दिव्य ध्वनि सुनूं, ऐसा जो मेरी भावना है इतनी प्यारी भावना, ये भावना सुख को देने वाली है कि दुख को देने वाली है? ये वाली भावना दुख को देने वाली है, ये वाली बातें अब इस ढाल में आने वाली है, तीसरे चौथे छंद में आ जाएगी और गुरुदेव श्री इसको बताएंगे। अब हम पढ़ेंगे, आप लोग अभी देखना, ये जो सात तत्व संबंधी भूल वाला जिसका टॉपिक है, हम सात तत्व संबंधी भूल वाला एग्जाम भी बहुत प्रैक्टिकली लेने वाले हैं। मैं आपको मतलब एक मनीष अंकल को भी एक पेपर मेल किया है, बट हम लोग अब जो पढ़ाई करने वाले हैं वो बहुत ही गजब की होने वाली है। आप बताइए, ये तीर्थंकर भगवान का प्रवचन सुनने, उनकी दिव्य ध्वनि सुनने का परिणाम सुख का कारण है कि दुख का कारण है?
रुजुल मानस दिया समीर बोल
आप लोगों ने
बेटा।
सात तत्व पढ़े हैं ना, आप लोगों ने सात तत्व पढ़े हैं ना, तो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का परिणाम ये कौन सा तत्व कहलाता है? एनीवन? वी हैव सेवन तत्वास, जीव अजीव आश्रो बंध संवर निर्जरा मोक्ष। तो मुझे यदि भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए मेरा एकदम से अचानक से भाव आया कि चलो यार, मुझे कुंद कुंद आचार्य देव जंगल में बैठे, उनको एक शंका हुई और उनको एकदम से ऐसा दुख, अरे मुझे केवली का समागम नहीं है, मुझे तीर्थंकर भगवान होते तो मैं उनसे शंका का समाधान कर लेता। उन्होंने यहाँ ऐसा सोचा और सीमंदर भगवान के दिव्य ध्वनि में आया सद्धर्म वृद्धि रस्तु, तुम्हारी धर्म में वृद्धि हो। तो सब लोग बोलते हैं अचानक से भगवान आशीर्वाद किसको दे रहे हैं, तो उनकी दिव्य ध्वनि में आया है कि भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य कुंद कुंद देव, वहां से उन्होंने नमस्कार किया था तो उनको उनको गया है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कुंद कुंद आचार्य देव ने जो नमस्कार किया सीमंदर भगवान को, ये कौन सा तत्व है? जीव तत्व है, जीव तत्व, आश्रय तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व है। आप लोगों ने जितना भी अभी पढ़ा है उसके हिसाब से बताओ,
अरे खोटा है तो भी चलेगा, जवाब तो दो बच्चों।
कुछ भी बोलो, आप अपना लॉजिक आपके पास है, तो ये वाला क्या है, कौन सा तत्व होगा? अजीव तत्व। ओके, वन आंसर इज अजीव तत्व। आई एम सेइंग जो कुंद कुंद आचार्य देव के अंदर में उनकी जो परिणाम हुआ ना कि चलो काश मैं भगवान की दिव्य ध्वनि सुनता सुन पाता, इतना अच्छा परिणाम, इतनी अच्छी भावना है, तो ये कौन सा तत्व, ये वाली भावना? मानस, रिजुल, समीर, आप लोग नाराज हो क्या? आप लोग खुद ही
रुजुल ये जवाब बराबर है ना दिया का, अजीव तत्व है ना।
संवर
संवर, ओके
संवर
संवर
बताया।
बताया,
अभी
ओके।
समीर आप बताओ जवाब दोनों करेक्ट है, क्योंकि दो तो नहीं हो सकते, एक ही हो सकते हैं।
I couldn't hear the question because the voice is cracking.
Oh, you could have told me earlier. Are you
Yeah, I
able
have
to?
this.
Oh, अच्छा। सचिन जी और नितिन जी, आपको भी क्रैकल्ड आ रही है क्या आवाज?
अभी अभी लास्ट, हाँ लास्ट 2-3 सेंटेंस में थोड़ी गुड़ गुड़ करके आ रही
सॉरी
है।
सॉरी 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 सॉरी
आई थिंक आपके वहां नहीं होगा, अभी हम सब है ना जो स्पीकर पे आए ना वो सब अनस्पीकर कर लो, तो देखो मे बी दैट कैन बी द पॉसिबिलिटी।
इज इट क्लियर नाउ बाय एनी चांस?
समीर वी कैन नॉट हियर यू करेक्टली बेटा, आप स्पीकर से ऑफ होके बोलो जवाब।
समीर एम आई ऑडिबल?
या
ओके नाउ इट्स फाइन राइट नाउ द वॉइस इज नॉट क्रैकलिंग
नहीं अभी नहीं है बराबर
ओके तुम्हें
आप टाइप से आते हो भैया
मैं
हाँ
मैं स्काइप पर हूँ डायरेक्टली इंटरनेट से सीधा
बट मुझे तो अनुभव जी की आवाज बहुत क्लियर दिख रही है सुनाई दे रही है पता नहीं क्यों और
मुझे भी आप लोगों की
डिड यू ब्रिंग हिम
नो नो
No. मुझे तो सबकी आवाज ब्रेक हो रही है
हाँ मुझे भी मुझे समीर की और पंडित जी की दोनों की आवाज वैसे आ रही है
ओके मैं वापस कट करके फिर से ज्वाइन करूँ क्या
हाँ प्लीज आप सॉरी हाँ हाँ
प्लीज प्लीज मैं फिर वापस
एंड समीर कैन यू से समथिंग टू नैरो द ऑप्शन टू समीर रुजू Manas, you keep answering when Panditji is asking, okay? Because it doesn't look good when he's asking all the time. We have to answer, you know, like 2-3 times. Please, Beta.
We still can't hear. The voice is also cracking.
Samir, aapki bhi awaaz gurgur karke aa rahi hai. Thodi, I mean, samajh mein nahi aata mujhe to.
Hello? Now is it fine? आप ठीक है आप ठीक मानस इज इट क्लियर नाउ
नहीं
हेलो सचिन
मुझे तो
एक मिनट ऐसे करते सब लोग म्यूट हो जाओ एक्सेप्ट पंडित जी अभी एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ एंड पंडित जी आप थोड़ा बोलो देखो हम करते
हाँ 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 ओके चलिए तो मैं ये बोल रहा था कि मानते हैं कुंदकुंद आचार्य देव हैं वो जंगल में बैठे हुए हैं उनको एक समस्या उनको एक डाउट आया तो उनको अचानक से ऐसा लगा काश हमें तीर्थंकर होते तो हमको आज ये वाला डाउट रिजॉल्व हो जाता डाउट तो ये उनका जो परिणाम है कि काश मुझे तीर्थंकर भगवान का समवशरण मिलता ये वाला परिणाम कौन सा तत्व है जीव अजीव आशो बन संवर निर्जर मोक्ष Dia said achieve and I think Manas said samvar tattva. Anybody else has a different opinion? Ab hum log as and when we'll be proceeding, hum log dekhenge, theek hai? Ye kaun sa tattva hai? So, starting mein base clear karne ke liye, what I have planned on this ye wali year mein, ki Gurudev Shri ke every pravachan ke baad I'll give you the notes of that, the small, you know, write-ups on those pravachan, jo bhi main points hain. Wo, after our discussion, aap wo usko pad sakte ho ghar par, and next time pe koi bhi doubt ho, to hum usko pad sakte hain, jo Gurudev Shri ne 10 minute ya 15 minute hum jo bhi sunenge. To main bas aaj ke liye, starting mein base ke liye, jo jo ki terminology hai, is dusri dhal ki, wo wali terminology par main discussion kar raha hun, to ek baar hume revision karna padega, okay? What is Mithya Darshan? Anyone? Unmute करके कोई बताएंगे what is Mithya Darshan?
Wrong belief.
उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं right? Wrong belief about what? यदि मुझको 10 का टेबल नहीं आता है तो is it Mithya Darshan? Is it because of Mithya Darshan? Or if I think that let's say the I believe that the capital of United States is New York. So is it a wrong belief? Is it mithyatva?
No.
Arey, but I am believing it. I believe it like 100%. Whoever asked me in the interview, what is the capital of United States? I say New York. It's New York for sure. It's a wrong belief or not?
Yes.
It's a wrong belief, right?
No.
It's a Mithya Darshan. Mithyatva, right? Anybody? See, so इसलिए मिथ्यात्व की पूरी परिभाषा है प्रयोजन भूत तत्वों में उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है प्रयोजन भूत अरे यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल कुछ भी हो उससे मुझे सुख या दुख डिसीजन नहीं होता ना चलो ठीक है वॉशिंगटन डीसी बोल दो बट हाउ डिफरेंस how different it is for me from New York. I don't care wo kuch bhi ho. I don't care even if US ki jo capital hai wo aap Washington DC bolo ya New York bolo ya New Jersey ya koi bhi jagah bol do wahan ki ya fir England bol do kuch bhi bol do usse main moksh mein jaunga ya nahi jaunga ya mera chautha gurdasthan ho jayega mera panchwa ho jayega ye to nahi hota na usse kuch to mithyatva kis cheez mein hota hai प्रयोजन भूत तत्वों में द तत्व जिनसे हमको प्रयोजन है जिससे हमारा सेल्फ का काम मोटिव सत्ता हो हमारा प्रयोजन क्या है सुख की प्राप्ति तो जिन चीजों को जानने से मुझे सुख मिलता हो वो वाली चीजों के बारे में मेरा उल्टा मानना रॉन्ग बिलीफ अबाउट द पर्पसफुल थिंग्स द थिंग्स फ्रॉम व्हिच आई हैव माय पर्पस फुलफिल्ड आई गेट माय पर्पस फुलफिल्ड उसको मिथ्यात्व कहते हैं ठीक है तो मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं सम्यक दर्शन का जो उल्टा होता है उसे मिथ्या दर्शन कहते हैं सम्यक दर्शन किसे कहते हैं प्रयोजन भूत तत्वों के यथार्थ श्रद्धान को तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तत्वों का यथार्थ श्रद्धान तत्वार्थ श्रद्धान उसको सम्यक दर्शन कहते हैं तो मिथ्या दर्शन किसे बोलेंगे तत्वों का प्रयोजन भूत तत्वों का अयथार्थ मतलब उल्टा श्रद्धान वो मिथ्या दर्शन कहलाता है फाइन ठीक है यहाँ तक ठीक है सी गुरुदेव श्री ये वाली बातें लेने वाले हैं तो मैं एक बार आप लोग की बस ग्लॉसरी बना रहा हूँ कि हमारे माइंड में सब क्लियर होना चाहिए वाली बातें ठीक है तो वी हैव 20 मिनट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट द कॉन्सेप्ट दैट इन दिस डाल वी हैव टू वर्क विद ठीक है मिथ्या दर्शन की हमें शॉर्ट परिभाषा पता थी कि रॉन्ग बिलीफ बट रॉन्ग बिलीफ अबाउट वॉट अबाउट द कैपिटल्स और ज्योग्राफी ऑफ प्रेजेंट मैप और समथिंग नो इट डजेंट मैटर That's of no use for us. कि कौन सा treasure किस country में और किस country में ज्यादा gold रहता है और किस country में ज्यादा diamonds मिलते हैं That is of no use for us. Right? हमें तत्वों के बारे में किसी को बुरा श्रद्धान हो वो मिथ्यात्व कहलाता है और तत्वों के बारे में जिसको यथार्थ श्रद्धान हो सम्यक कहलाता है तो what is मिथ्या ज्ञान तो श्रद्धान की जगह ज्ञान कर दो तत्वों को अच्छे से नहीं जानना वो मिथ्या ज्ञान है मिथ्या चारित्र बिना तत्वों को जाने हम जो भी परिणमते हैं उस सबको मिथ्या चारित्र कहते हैं क्यों कि देखो हमको यदि पता होता कि ये सब में देखो हम जो रात में चलते हैं ना तो रात में चलने से इतने सारे जीवों का घात होता है तो हम रात में फिर कभी चलते नहीं क्योंकि हमको सामने दिखता गुरुदेव श्री होते थे ना गुरुदेव श्री तो रात में सोनगढ़ में आफ्टर लाइक जब नाइट होती थी ना तो वहां पर रात में प्रवचन नहीं होते थे वहां चर्चा होती थी उस चर्चा में सिर्फ एक छोटा सा इतना सा एक बल्ब बस जलता था जीवों की इतनी केयर जब परमागम मंदिर बना रहे थे तो वहां एक पेड़ काटने को बोल रहे थे गुरुदेव श्री ने बोला था ये मंदिर नहीं बनेगा आप पेड़ काटने तो आप मंदिर नहीं बनाओगे फिर भी जैसे तैसे उन लोगों ने जो भी किया वो गुरुदेव श्री को बिना बताकर बट गुरुदेव श्री के मतलब उनको जो जीवो मतलब वो जितना बाहर हम बोलते हैं ना दया दान व्रत भक्ति कुछ भी नहीं है उतनी उनके जीवन में दया इतनी असीम थी तो ये जो बिना तत्वों को जाने बिना जीवों की चर्चा की अपन लोग ऐसे बिना देखकर दौड़ते रहते हैं हम लोग सॉकर खेल रहे हैं तो घास में इतनी फुटबॉल खेल रहे हैं बट उसके नीचे कितने सारे जीव हैं तो ये जो जितना भी हमारा आचरण है कहलाता है मिथ्या आचरण ओके मिथ्या चारित्र तो मिथ्या दर्शन सात तत्वों की उल्टी श्रद्धा मिथ्या ज्ञान सात तत्वों का उल्टा ज्ञान मिथ्या चारित्र सात तत्वों का ज्ञान नहीं होने पर यानी कि मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान होने पर इस जीव का आचरण वही मिथ्या चारित्र कहलाता है ओके अब क्वेश्चन उठता है कि तत्व क्या होता है जो तत्वों का आप उल्टा श्रद्धान बोल रहे हो व्हाट डू वी मीन बाय तत्व हु विल टेल मी द डेफिनेशन ऑफ तत्व अनम्यूट एंड से एनीवन तत्व तत्व किसे कहते हैं
जो जैसा है उसको वैसे जानो वो तत्व होते हैं
ये एक डेफिनेशन आई हमारे पास जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव वही तत्व है तत्व मतलब एक्चुअली क्या होता है तत्व यानी कि वी आर एक्चुअली नाउ यू नो वी हैव नाउ द हैट ऑफ अ यू नो रिसर्चर, हम लोग अपने सिर पर हैट रख लेते, वी आर नो मोर एनी वन, वी जस्ट एनालाइज एवरीथिंग. सो छह द्रव्य होते थे 343 घन राजू के श्लोक में, 343 घन राजू, क्यूबिक राजू, दिस इज द एरिया ऑफ दिस थ्री वर्ल्ड, ओके, ऊर्धलोक, मध्यलोक, अधोलोक, फाइन. इसमें क्या पाया जाता है, सिर्फ द्रव्य पाए जाते हैं. कितने द्रव्य पाए जाते हैं, छह द्रव्य पाए जाते हैं. इसके अलावा कुछ और होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता. तो सातत्व कहाँ रहते हैं, तो देखो जब हम इस लोक को एज अ यू नो टूरिस्ट देखने जाते हैं तो हमको क्या दिखता है, तत्व दिख, हमको द्रव्य दिखते हैं कि अरे देखो यहाँ पुद्गल भी है, अरे यहाँ जीव भी है, अरे देखो ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य. जब हम कैसे जा रहे हैं, एज अ टूरिस्ट, जब हम देखने जा रहे हैं ओनली देखने के लिए, जब हमें कोई काम नहीं है. पर जब हम एज अ रिसर्च करने वाला जाते हैं ना, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल से हम जा रहे हैं जैसे, और डिस्कवरी चैनल से भी हम गोइंग, सो नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन वेदर इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री और बैड कंट्री, वी हैव टू मेक सेंस आउट ऑफ इट. हमको इसमें से कुछ पर्पज निकालना है. पहले तो हम एज अ सीनरी इसको देख रहे थे, कितनी सुंदर है दुनिया, देखो जम्बू द्वीप पूरा गोल है, उसके चारों तरफ लवण समुद्र है, देखो यहाँ तक देवगति के जीव ऊर्व लोक में रहते हैं, देखो तिरंज गति के जीव ऐसे होते हैं. ये तो हमने द्रव्यों के बारे में जाना, लेकिन इन द्रव्यों से मतलब क्या है मुझे, मैं देवगति में चलो हमने पढ़ लिया सात नरक होते हैं, क्या फायदा हो गया सात नरक होते हैं तो. हाउ डज इट हेल्प मी नोइंग दैट, हाउ डज नोइंग दैट देर आर फोर गतिज, हाउ डज इट हेल्प मी. तो अब हम बींग नाउ एनालिस्ट, नॉट अ टूरिस्ट, वी आर नॉट सिंपली the you know audience to the world. अब हम कोई थिएटर में मूवी देखने नहीं आए, अब हमको एक्चुअली क्लासरूम में बैठे और हमारे सामने अभी छह द्रव्य चल रहे हैं, तो हमें छह द्रव्य में से सेंस, वी हैव टू मेक सेंस आउट ऑफ दीज सिक्स सब्सटेंसेस, ओके. तो नाउ अब हम उनको एनालाइज करेंगे, तो इस एनालिसिस को बोलते हैं तत्व. क्या, जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव वो उसका तत्व कहलाता है. तत्व मीन्स वॉट इज द यू नो क्रक्स ऑफ दिस सब्सटेंस, द क्रक्स ऑफ एवरी सब्सटेंस इज नोन एज तत्व. कि मान लिया मैंने जीव है, जीव द्रव्य है, तो क्या हो गया, जीव द्रव्य है. द मोमेंट आई रियलाइज ओ माई गॉड दिस जीव द्रव्य इज नोबडी एल्स बट मी, ये मैं हूँ, ये जीव द्रव्य मैं हूँ. देखो मेरे मम्मी पापा भी हैं लेकिन मैं इनके जानने से नहीं जानता हूँ, मैं कितना इंडिपेंडेंट हूँ अपना जानने के लिए, राइट. मैं अपने माता पिता का ज्ञान लेकर नहीं जानता, मैं अपने ज्ञान से जानता हूँ, राइट. तो जब मुझे ये पता पड़ा कि अच्छा इतने सारे जीव द्रव्य हैं और इनमें से सिर्फ मेरे ही जीव द्रव्य मेरा काम करता है, मेरे ही जीव द्रव्य मेरा सुख दुख को भोगता है, तो फिर मुझे बाकी जीव द्रव्यों से क्या लेना देना. तो पहला तत्व निकलता है जब हमने ये वाला एनालिसिस किया, तो फर्स्ट तत्व निकला, उस तत्व को बोलते हैं जीव तत्व. जीव तत्व की क्या डेफिनेशन है, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए उसको जीव तत्व कहते हैं. किसका ज्ञान दर्शन, मेरा. तो मेरे लिए मानस आप कौन से तत्व हैं, जीव तत्व. मानस आप कौन से तत्व, जीव तत्व होना
आपके लिए अजीव तत्व.
वेरी गुड, कि जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो सिर्फ जीव तत्व है, उसके लिए बाकी सब क्या है, अजीव है. तो बाकी सारे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश एंड काल, ऑल ऑफ दीज सब्सटेंसेस, सारे के सारे द्रव्य मुझ जीव तत्व के लिए कैसे हैं, अजीव है, मैं नहीं हूँ ये, इसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं, इसलिए मुझे इससे काम नहीं, ठीक है. तो जीव तत्व जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए उसे जीव तत्व कहते हैं. The substance, sorry, the tattva in which my knowledge and perception attributes are found, that substance, it's not substance, sorry, that tattva, tattva ko in English mein essential bolte hain. It's essential to know. So, dravya substance, but what is essential in a substance that we have to know? Theek hai? So, in that essential in which mera, knowledge and perception attributes are found, that essential is known as jeev tattva, jeev essential, theek hai. And all other substances of this world, every other substance other than the substance in which my knowledge and perception is found, mujhme jisme mera gyan darshan nahi paya jata, wo sare ke sare dravya ajeev tattva kehlate hain, theek hai. Simple. जीव और अजीव. नाउ आश्रव तत्व बताएंगे, कौन बताएगा आश्रव किसे कहते हैं? एनीबडी वॉन्ट्स टू गिव इट अ ट्राई?
आश्रव तत्व is when like the karma they come inside, like it's the influx of karma.
It's influx of karma, right? Influx of karma. Okay, very good. Anybody wants to modify it? Influx of karma. कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं. इनफ्लक्स ऑफ कर्म, आश्रव नेम इज इनफ्लक्स ओनली इन इंग्लिश, राइट? तो कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, राइट? हु अग्रीज विद रिजुल? रिजुल ओनली सेड, राइट? या सी क्विकली, वी हैव टू डिस्कवर मेनी थिंग्स टुडे, ओके? एंड वी ओनली हैव 8 मिनट्स टू गो. हाँ जी,
आई एग्री विद रिजुल.
ओके, कर्मों के आने को. ओके, लेट्स जस्ट टेक अ मूवमेंट बैक. हम वापस पुराने मूवमेंट पे जाते हैं. अजीव तत्व की क्या डेफिनेशन थी? जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाए, मुझे छोड़कर सारे द्रव्य अजीव हैं. ओके, अच्छा आप बोल रहे हो आश्रव तत्व. दो मिनट, पहले तो समझते हैं. 6 सब्सटेंस होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं. तो जीव द्रव्य में, जीव तत्व में कितने द्रव्य आए? जीव तत्व में आउट ऑफ ऑल द द्रव्यास, हाउ मेनी द्रव्य बिलोंग टू जीव? जीव तत्व इफ वी कैटेगराइज इट, देन
वन, राइट?
वन ओनली, मी, राइट? जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए. एंड ऑल अदर द्रव्यास, दे फॉल अंडर विच कैटेगरी? अजीव तत्व, राइट? मानस, रिजुल, एम आई मेकिंग सेंस? तो देखो, 6 द्रव्य होते थे श्लोक में, 6 द्रव्य के अलावा कुछ भी नहीं है. कन्विंस्ड, देयर इज ओनली 6 सब्सटेंसेस, देयर इज नथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड अदर देन 6 सब्सटेंसेस, ठीक है? हमने जब पहले 2 तत्व देखे तो उसमें ही सारे 6 सब्सटेंस आ गए. जीव में मैं आ गया, अजीव में सारे सब्सटेंस आ गए. तो फिर आश्रव बन संबंध निचला मोक्ष, कौन से इनमें कौन से द्रव्य आएंगे? Did you get my question? In this 3 लोक, यहाँ पर सिर्फ 6 द्रव्य होते हैं, ठीक है? फिर 7 तत्व क्या है? तो हमने बोला 7 तत्व 6 द्रव्यों में ऐसे ही बनते हैं. जब हम एनालिस्ट बन जाते हैं तो वही 6 द्रव्यों को हम 7 तत्व में डिवाइड कर लेते हैं. तो उसमें से पहला जीव तत्व है, उसमें के लिए मैं पाया जाता हूँ, मैं, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए. अजीव में बाकी सारे सारे अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक, काल, लोक, प्रमाण, असंख्यात, इतने सारे द्रव्य किस में आ जाते हैं? अजीव तत्व में आ जाते हैं. तो फिर आश्रव बन संवरण निचला मोक्ष कहाँ पर जाएंगे, ये कौन से द्रव्य हैं?
अजीव,
दे आर अजीव. आश्रव बन संवरण निचला मोक्ष, मोक्ष अजीव है. अजीव से एक सेपरेट तत्व है ना, ये अजीव से तो अलग ही होंगे तभी इनका अलग नाम है. बट ये कौन से द्रव्य में आते हैं? पुद्गल है, जीव है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है.
पुद्गल,
हाँ, पुद्गल. आश्रव बन संवर निर्जरा एंड मोक्ष, ये पुद्गल है कि कौन से तत्व है, कौन से द्रव्य है, सॉरी? बट पुद्गल तो सारे अजीव तत्व में आ गए ना, इट हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम दैट.
कर्मों में ज्ञान दर्शन कुछ नहीं है ना.
वाओ, आपने आंटी एक्सीलेंट पॉइंट दिया. ये वाले पॉइंट को आप होल्ड करिएगा क्योंकि ये 2 मिनट बाद आने वाला है. ओके, आंटी का आर्ग्यूमेंट है कि आश्रव ये क्या है, ये पुद्गल द्रव्य है क्योंकि कर्म पुद्गल द्रव्य होते हैं और कर्मों के आने को आश्रव बोलते हैं, इसलिए आश्रव पुद्गल द्रव्य है. हु अग्रीज विद अनियति आंटी?
आंटी
से चलो. तो आंटी मोक्ष तत्व कौन सा द्रव्य हुआ फिर? ओके 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 वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. मैं बताता हूँ. देखो, इन सात तत्वों में से जीव और अजीव ये तत्व तो द्रव्य रूप हैं और बाकी के पांच तत्व पर्याय हैं, वो द्रव्य नहीं है. तो वो ना जीव द्रव्य, ना पुद्गल द्रव्य, ना धर्म, ना धर्म, ना आकाश, ना काल है. आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये सब जीव तत्व की पर्याय, जीव द्रव्य की पर्याय. कौन सा जीव तत्व? मेरी. दे आर माई ओन पर्याय. हम देखो, हमने क्या किया, हमारा पर्पज क्या था, हम एनालिस्ट बने थे, राइट? हम स्पेक्टेटर नहीं थे. हम छह द्रव्य नहीं देख रहे, हम सात तत्व देख रहे हैं. तो मुझे एक तो अपने आप को देखने से कुछ काम बनता, राइट? हमको अपने नेबरहुड में देखने से घर में पैसे नहीं आते हैं. अपने घर में कैपेबिलिटीज देखनी होती, क्या चलो हमारे घर में ये लोग हैं, अच्छा हमारा बेटा पढ़ेगा, हमारी वाइफ ये करती है, मैं ये करता हूँ. तो ये हम पूरा अपने घर वालों को देखते हैं, अपने नेबर को देखकर हम डिसीजन नहीं लेते, राइट? द सेम वे अजीव को देखकर तो कुछ बनेगा ही नहीं. तो हम अपने जीव द्रव्य को सिक्स तत्वों में डिवाइड करते हैं. एक तो जीव मैं हूँ, ठीक है, तो ये जीव तत्व हो गया. और मेरी पांच टाइप की पर्याय होती हैं. आश्रव मेरी पर्याय है, बंध मेरी पर्याय है, संवर मेरी पर्याय है, निर्जरा मेरी पर्याय है, और मोक्ष मेरी पर्याय है. ओके, फाइन. तो ये पांच जीव द्रव्य की पर्याय हैं, और बाकी के छह द्रव्य पहले दो तत्वों में ही आ जाते हैं. जीव तत्व में मैं आ जाता हूँ, और अजीव तत्व में बाकी सारे द्रव्य. फिर आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये मेरी ही पर्याय है. तो यदि मानस आप आज गुस्सा कर रहे हो, तो ये मेरे लिए आश्रव नहीं है, वो आपके लिए आश्रव है. आप कषाय करते हो ना, तो ये आपकी पर्याय है. मेरे लिए तो आप कौन हो? अजीव हो. तो आपका गुस्सा मेरे लिए कौन सा तत्व है? अजीव है कि आश्रव है? थोड़ा नया हो गया ना ये. माय क्वेश्चन इज दैट यू आर गेटिंग एंग्री, यू आर डूइंग पैशन. ओके, पैशन कर रहे हो आप. तो पैशन तो भैया क्या है? आपकी पर्याय है, विकारी अशुद्ध पर्याय होती है ना, है ना? राग द्वेष करना अशुद्ध पर्याय है, वीतरागता शुद्ध पर्याय है, करेक्ट?
हाँ जी,
राइट. तो ये आपकी जो अशुद्ध पर्याय है, ये मेरे लिए कौन सा द्रव्य हुई, कौन सा तत्व हुई? मेरे लिए भी आश्रव हुई ना आपकी बुरी पर्याय.
पर्याय तो द्रव्य की होती है.
पर्याय द्रव्य की होती, बराबर. तो वो तो मानस मेरे लिए कौन सा द्रव्य है, कौन सा तत्व है? अजीव तत्व है. तो मानस की पर्याय भी मेरे लिए क्या होगी? अजीव होगी. तो आश्रव कभी दूसरों का नहीं होता, आश्रव हमेशा अपनी पर्याय होती है. तो मेरे लिए आश्रव क्या है? मानस का किया हुआ गुस्सा नहीं, मेरी परिणति में जो गुस्सा आ रहा है ना, वो मेरा आश्रव है. मानस का किया हुआ गुस्सा वो आश्रव नहीं, वो अजीव है. इसके लिए मानस को गुस्सा करते हुए देख के मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए. अरे मानस क्यों गुस्सा कर रहे हैं, कुछ समझते ही नहीं है कभी, ये ऐसे ही हमेशा नाराज हो जाता है. मेरा ये अधिकारी नहीं है. मानस का गुस्सा करना वो मानस के अधीन है. मैं उस पर क्यों करूं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता ना, राइट? हमारी प्रॉब्लम क्या है कि देखो, हम दूसरों को तो पढ़ाने बैठ जाते, जैसे मैं आपको पढ़ाने बैठ गया, चलो कषाय नहीं करो, पाप नहीं करो. लेकिन एक्चुअली मैं तो कर रहा हूँ ना, तो मुझे आप लोग करो नहीं करो, उससे मेरा बंध और मोक्ष थोड़ी है. मेरी कषाय से मेरा भला बुरा है, राइट? इसके लिए आश्रव हमेशा अपनी पर्याय होती है. बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये पांचों पर्याय हमेशा हमारी होती है. दूसरे तो सिर्फ अजीव हैं, वो गुस्सा करें या भगवान बने. भगवान की वीतरागता हमारे लिए कौन सा तत्व है? जल्दी क्विकली नाउ. भगवान की वीतरागता भी हमारे लिए कौन सा है? मोक्ष तत्व नहीं है, वो अजीव तत्व है. हाँ, जिस दिन मुझे वीतरागता होगी पूरी, तब वो मेरे लिए मोक्ष बनेगा, करेक्ट?
बराबर.
ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पर्याय है. किसकी पर्याय है? मेरी. सामने वाले की तो सब, सामने वाले का द्रव्य अजीव, उसके गुण अजीव, और उसकी पर्याय अजीव. उससे मुझे लेना ही देना नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आप लोग यूएस में रहते हो, तो इराक में इतने सारे पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, तो आप लोग थोड़े वरी होते हो कि नहीं होते हो? अरे यार आज इराक में ऐसा हो गया, अरे यार आज इराक में ऐसा हो गया, और यू डोंट बॉदर अबाउट इट. यू डोंट बॉदर अबाउट इट, राइट?
व्हाई?
इट डजंट मैटर टू मी. द सेम वे हमारी पर्याय में यदि बॉम्बिंग्स हो रही है, हमारी पर्याय में पैशंस आती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, देन इट्स अ मैटर ऑफ लाइक यूएस में आपके यहाँ पर यदि कुछ अटैक हो रहा है ओ दैट्स अ प्रॉब्लम दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम बट इफ इराक में इट इज हैपनिंग वी डोंट रियली वरी मच अबाउट इट राइट वो प्रेसिडेंट्स वगैरह और पॉलिटिशियंस वगैरह देख रहे हैं जो देख रहे हैं वी आर डेली लाइफ डू नॉट गेट अफेक्टेड बाई द सेम वे सामने मानस की पर्याय में या आपकी पर्याय में क्या पैशन हो रहे हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है आप नरक गति में जा रहे हो या देव गति में जा रहे हो कि आपके परिभ्रमण से मुझे मोक्ष नहीं होगा मुझे सम्यक ज्ञान नहीं होगा मुझे सम्यक ज्ञान तो जब मैं खुद सातत्वों को सही समझूंगा तब होगा तो मेरे लिए आपकी अच्छे काम या बुरे काम आपका मोक्ष में जाना या आपका पाप करना ये सब क्या है अजीब तत्व है इससे समझ में आ रहा है आपको देखो हम किसी को देखते हैं और हम देखते हैं कि अरे कितना गुस्सा करता है तो हम उसको समझाने हम उसको मतलब बुरा देखने लगते हैं अरे इसकी कषायें बहुत तीव्र हैं इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है ये लोग कितना आश्रव करते हैं हमको ये सीखना पड़ेगा आज के आश्रव दूसरों की पर्याय नहीं होती तो हमने आज तक किसी को आश्रव करते देखा है तो वो बस हम ही है और किसी को आश्रव नहीं देखा वो तो पुद्गल वो अजीब था हमारे लिए ठीक है तो आपको दूसरों के आश्रव देखकर कभी अब क्रोध नहीं आना चाहिए कि यार ये इतना गुस्सा क्यों कर रहा है भैया वो अजीब है जैसे आप दूसरों की चीजों पे अपनी नाक नहीं लगाते हो ना बीच में टांग नहीं अड़ाते ना अपन अपनी ऐसी वहां पर बीच में जाकर यू नो वहां पर परेशान मत करो आप वहां पर आप परेशान हो जाओगे नहीं तो इसलिए दूसरे क्या करते हैं हम देखो साधर्मी हैं तो एक दूसरे को धर्म में लगाते हैं लेकिन उसको धर्म में लगाने से हमें धर्म हो जाएगा उसके सम्यक दर्शन होने से मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा ऐसा नहीं है उसके लिए हमको अपना खुद का निर्णय करना पड़ेगा पक्का हेलो ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ आश्रव बन संवर निर्जरा मोक्ष ये सामने वाले की पर्याय नहीं है वो उसकी तो पर्याय सारी अजीब है मेरे लिए ये मेरी पर्याय में घटित होता है सात तत्व में से छह तत्व जीव के हैं और एक तत्व बाकी के सारे द्रव्यों का जो बाकी के सारे द्रव्यों का उसमें सारे द्रव्य आ गए वो अजीब तत्व कहलाता है और मैंने अपने ही मेरे छह पार्टीशन किए मेरा सबसे पहले जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो मेरा द्रव्य उस द्रव्य को अलग किया मैंने अपनी सारी पर्याय निकाली अब मैंने पर्यायों को पांच टाइप में डिवाइड किया फाइव टाइप्स ऑफ माई पर्याय एक आश्रव की पर्याय होती है एक बंध की पर्याय होती है एक संवर की पर्याय होती है एक निर्जरा की पर्याय होती है और एक मोक्ष की पर्याय होती है दीज आर ऑल माई फाइव पर्याय ऐसा कोई भी जीव द्रव्य नहीं है जिसके पांचों पर्याय कभी ना होती हो ठीक है तो मतलब अभव्यों को छोड़ दो हमारे महावीर भगवान थे तो जब वो नरक में गए होंगे कभी या शेर थे तब उनके आश्रव बंध की पर्याय होती थी फिर उन्होंने दीक्षा धारण करी तो उनके संवर निर्जरा की पर्याय होती थी और अब वो मोक्ष में उनकी मोक्ष की पर्याय इसके अलावा कोई और पर्याय हुई उनकी नहीं ये पांच ही पर्याय होती है पक्का Everyone.
So these are like my properties. That's it. No, paisa, kuch mera nahi hai. Ye hi mera hai bas.
These are the only five things jiske jaisa main dikh sakta hu. Main ya to kisi par gussa karta hua dikh sakta hu ya kisi par pyar karta hua, matlab karuna karta hua. Lekin main kabhi colorful nahi dikhunga. Main kabhi you know kisi ko chalaunga nahi as such. Theek hai? To hum sirf paanch tarike se hi kaam karte hain. Wo hamari paanch paryay kehlati hain. ठीक है फाइन यहाँ तक क्लियर हुआ तो नियति आंटी ने जो क्वेश्चन वो आंसर दिया था उस आंसर पे डिस्कस करते हैं तो इसके हिसाब से यदि मैं आश्रव बोलूंगा कर्मों का आना तो ये आश्रव की डेफिनेशन कर्म कौन से तत्व है भैया जीव है कि अजीव है कर्म आप कर्म में आपका ज्ञान दर्शन पाया जाता है क्या कर्म में हमारा ज्ञान दर्शन पाया जाता है Yes or no? मानस विजुल सो गए आप लोग बहुत बोरिंग हो गया आज
I think आज सब सो गए लगते मानस
ऐसे मत करो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट आ रहा है यहाँ पर प्लीज मानस कर्म कौन सा तत्व हुआ अजीव के अजीव हमारे लिए सिंपल क्वेश्चन
अजीव
अजीब राइट तो कर्मों का आना वो कर्म की पर्याय है कि जीव की पर्याय है
कर्म की
तो कर्मों का आना वो आश्रव तो मेरी पर्याय तो कर्मों का आना मेरी पर्याय कैसे हो सकती है तो कर्मों का आना या आश्रव की डेफिनेशन कैसे होगी कर्मों का आना ये तो अजीव तत्व का कार्य है। तो आश्रव किसे कहते हैं? आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होना, वो राग द्वेष वो आत्मा की पर्याय है, वो आश्रव है। और जब आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति होती है ना, तो एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस यू नो, जैसे रेड लाइट होती है ना वैसे ही सारी गाड़ियां रुक जाती हैं। तो रेड लाइट ने रोका है, रेड लाइट ने ब्रेक्स लगाए ना सारी कार्स में, रेड लाइट सारी कार के अंदर घुस जाती है और ब्रेक्स लगाती है, इज इट सो?
नहीं
ना, लेकिन क्या कहते हैं, रेड लाइट ने कार रोक दी। ऐसे ही कर्मों के आने को आश्रव नहीं कहते हैं। जब आत्मा राग द्वेष करता है तो ऑटोमेटिकली कर्म आते हैं। तो ऑटोमेटिकली ऐसा हम लोग ऐसे अपेक्षा से कहते हैं कि जैसे रेड लाइट ने कार को रोक लिया, एक्चुअली रेड लाइट ने कार को नहीं रोका है, ये चार पांच लोग देखो रेड लाइट होने पर भी पास करके चले गए, इंडिया में ऐसा होता है। ओके तो यहाँ पर चले जाते हैं रेड लाइट की, तो रेड लाइट रोकने वाली तो सबको रोके, बट इट डजंट स्टॉप यू। द सेम वे कर्मों का आना वो आश्रव नहीं है, आत्मा में राग द्वेष होना वो राग द्वेष आत्मा की पर्याय है। ये क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह ये आत्मा की पर्याय है। इस आत्मा की अशुद्ध पर्याय को कहते हैं आश्रव और बंध। और जैसे ये होती है ना वैसे कर्म आते हैं। तो हमने कर्मों को देखकर बोल दिया कर्मों के आने को आश्रव बोलते हैं, बट दैट्स अजीव तत्व। कर्मों का आना वो अजीव की पर्याय है, हमें कर्मों को नहीं देखना है। अब हम लोग बहुत बड़ी बात पढ़ रहे हैं, हम छह डाला की दूसरी डाल पढ़ रहे हैं। यहाँ कर्मों की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर आत्मा की पर्याय की बात करेंगे। इसलिए मैंने बोला था आज हमको ब्रश अप करना पड़ेगा, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने हैं हमको। कर्मों का आना वो आश्रव नहीं होता है, वो तो आश्रव कहा जाता है। एक्चुअली कर्म अजीव है, तो कर्मों का आना वो अजीव की पर्याय हो रहे, तो वो अजीव तत्व है। आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न होना वो आश्रव है। पक्का?
पक्का।
क्लियर भी देर? चलो हमारा टाइम एक्सीड हो गया ऑलरेडी, मैंने 10 मिनट ज्यादा ले लिया, सो सॉरी। आप लोग को इतना नहीं भूलना है, नेक्स्ट टाइम सीधे अब आपको गुरुदेवश्री का स्टार्ट होगा। अभी आश्रव तक की बात करी हमने, क्योंकि इतने ही अभी गुरुदेवश्री के सीधे प्रोसेशन जाना है। बट अब हमको मतलब एकदम एक एनालिस्ट बन के करना, ये वाला पूरा मैकेनिकल साइंटिफिक साइकोलॉजिकल एकदम अमेजिंग टॉपिक है, आपको बहुत एंजॉय होगा। आप लोग एक बार इसको पढ़ेंगे हम लोग जब, तो जब हम हेगे उपाधि उसकी क्विजेज भी बहुत इंटरेस्टिंग होंगी यहाँ। तो आप लोग प्लीज मतलब कभी भी तैयार रहना, कभी भी एकदम ऐसी छोटी सी क्विज हो सकती है एंड वेरी फनी, ठीक है? तो प्लीज अपना थोड़ा मॉरल हाई रखना, के लिए ऐसा नहीं हो कि पूरी क्लास में मैं एक्साइटेड हूँ। आप सब भी एक्साइटेड हैं।
अभी अभी से क्या करेंगे, ये वीक नहीं करेंगे, लेकिन अगले वीक से हम लोग टर्न रखेंगे सबका, एडल्ट का भी। एक एक वीक आपके जो प्रवचन होते ना उसके सिनॉप्सिस लिख के भेजते सचिन को।
हाँ हाँ, ओके,
मतलब 10 पॉइंट, आई मीन 10 सेंटेंसेस या 8 सेंटेंसेस में पूरा जो घंटा इवन गुरुदेव जी का सुनते ना, सबकी हाँ, बारी बारी आएगी, वो सचिन सबका टर्न बना देंगे अगले संडे और ईमेल से भेज देंगे, कैसे वो सचिन का जॉब है।
चलिए ठीक है, ठीक है। और मैंने लास्ट टाइम ये भी बोला था कि आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ेंगे और हम लोग उसको 10 मिनट देंगे सुनने के लिए, वो आज तो नहीं हो पाया, बट आप लोगों ने पढ़ा था किसी ने कुछ?
मैंने शुरू किया प्रवचन सर जी।
अरे क्या बात है, ग्रंथाधिराज बराबर, बहुत सुंदर। और आप लोगों ने किसी ने पढ़ा मानस समीर रिजुल कुछ भी धर्म का सेल्फ? चलो जैसे जैसे हम सातत्व के बारे में पता पढ़ेंगे ना, तो आपको पता पड़ेगा पढ़ना क्यों जरूरी है। 3-4 मतलब मजा आने वाला, गुरुदेव श्री के प्रवचन भी एकदम एक तरफा है इसमें, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट टाइम पर इसके आगे से गुरुदेव श्री का सीडी प्रवचन सुनेंगे। अब आप मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चार्ज की डेफिनेशन समझ के हो, जीव अजीव तत्व में क्या आता है और आश्रव का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो जो कुंद कुंद आचार्य देव को समोशरण में जाने का जो विचार है ना, वो राग का परिणाम है, राग होने से आश्रव है। और आश्रव कैसे हैं? दुखदाई हैं, गंदे हैं। इसके लिए भगवान के समोशरण में जाने का परिणाम वो आश्रव होने से दुख को देने वाला है, सुख को देने वाला नहीं है। तो सम्मी शिखर जी जाने का परिणाम ये दुख को देने वाला है, गुरुदेव श्री का सीडी प्रवचन सुनने का परिणाम ये भी दुख को देने वाला है, तो नहीं सुने। इसके अलावा जो करोगे खाना पीने का परिणाम, वो तो और ज्यादा दुख देने वाले हैं। तो मतलब ये सब राग है, तीव्र राग मंद राग, तो ये सब हमें दुखी देने वाले हैं, तो हमको आश्रवों का त्याग करना है। तो आश्रवों से भेद ज्ञान कराएंगे दूसरी ढाल में, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाते हैं, भजन मानी स्तुति करते हैं। चलिए रिजुल प्लीज भजन मानी स्तुति कराइए।
जापानी के ज्ञान से सूझे लो कलो तुम्हारी मस्तक नमो सजा दे तू दो नमकार मंत्र